أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. سورہ نور کی اس آیت کے حوالے سے میں نے اس آیت کو ایک اس سے مشابہ دوسری آیت کی مدد سے حل کیا, اور ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ خطبہ کا وقت ختم ہو گیا. دوسری آیت جو اس آیت کے مضمون کے بالکل مشابہ ہے اس تفصیل کو بیان فرما رہی ہے جس کا مجملاً یہاں ذکر موجود ہے کہ ایک ایسا انسان جو شراب کی پیروی کرتا ہے اسے بالآخر کچھ بھی نہیں ملتا سوائے اس کے کہ اپنے اعمال کی جزا کو اس وقت پاتا ہے جب کہ اس کی طلب, اس کی پیاس کی شدت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہوتی ہے, اور سوائے محرومی کے اور سزا کے کچھ بھی اس کے حصے میں نہیں آتا. یہ روشنی کا اندھیرا ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اسے ہم روشنیوں کے اندھیرے کہہ سکتے ہیں, یعنی ایسا سفر جو بظاہر روشنی میں ہو, سفر کرنے والا یہ سمجھتا ہو کہ روشنی ہے مگر فی الحقیقت وہ اندھیرا ہی ہو, نتیجہ وہی ہو جو اندھیرا پیدا کرتا ہے. بس ایک انسان جب کسی بھی چیز کو پانی سمجھ کے اس کی پیروی کرتا ہے تو بظاہر دیکھ رہا ہے, مگر جب اس مقصد کو پاتا ہے جسے وہ اپنا مطلوب بنا کے اس کے پیچھے چلتا ہے تو اس وقت اس کو سمجھ آتی ہے کہ وہ دھوکہ ہی تھا. اسی لیے قرآن کریم نے آخر پر یہ رکھا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, محض دھوکے کی پیروی ہے. بس روشنی کا دھوکا سب سے خطرناک دھوکا ہے, اور اس کی بھی تین منازل ہیں یا تین اس کی قسمیں ہیں, جس طرح دوسرے اندھیروں کی جو بات کی آیت میں بیان ہوا ہے تین قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں. اور اس اندھیرے میں بھی نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ظلمات کے اندر چلنے والے کو حاصل ہے, یعنی ٹھوکریں کھانا, رستے سے ہٹ جانا, تباہی کے گڑے میں جا پڑنا, ہر قسم کے خطرات درپیش ہوں لیکن معلوم نہ ہو کہ وہ خطرات ہیں کیا. یہی نتیجہ ہے روشنی کے اس سفر کا جو غرور کے نتیجے میں ہو, دھوکے کے نتیجے میں ہو. اور یہ اندھیرا ایسا ہے جو نفس سے پیدا ہوتا ہے. یہی میں مضمون تھا جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سمجھایا کہ ان تمام قسم کے اندھیروں کا جن کا یہاں اس آیت میں ذکر موجود ہے من شرور انفسنا سے تعلق ہے. تبھی خدا نے ہمیں دعا سکھائی کہ اے خدا ہمیں اپنے نفس کے شرور سے بچا, کیونکہ اپنے نفس کا شر انسان کو دکھائی نہیں دیتا, سب سے زیادہ مخفی حملہ کرنے والا شیطان نفس کا شیطان ہے, اور یہی شیطان غرور بھی کہلاتا ہے, یعنی سب سے بڑا دھوکے باز. اور اس کے پیدا کردہ اندھیروں کو خدا تعالیٰ نے غرور فرمایا, یعنی دھوکے, محض دھوکے, اس کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں. اب اس دوسری آیت کے حوالے سے جیسا کہ میں نے بیان کیا, یہ مضمون کھل رہا ہے اور دوبارہ میں اسی مضمون کو پھر لیتا ہوں, کیونکہ لعب اور لاف کا ایک ترجمہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور کچھ اس پر روشنی ڈالی, مگر اسی آیت پر قرآن کریم دوسری جگہ مزید روشنی ڈالتا ہے. لعب اور لہو کا دھوکہ کیا ہے, یہ کن کن منازل سے گزر کر کہاں تک پہنچاتے ہیں. بس ظلمات سلاس ان اندھیروں کے اندر بھی تہ بتہ موجود ہیں. کہنے کے تو تین اندھیرے ہیں, مگر آگے ان کی قسمیں اور پھر ہر قسم کے اندھیرے میں تہ بتہ اندھیروں کا وجود ملتا ہے, اور قرآن کریم ان کے اوپر سے پردے اٹھاتا اور ایک ایک چیز کھول کر دکھا دیتا ہے, تاکہ پھر ٹھوکر کھانے والے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے کہ میں نے لاعلمی میں ٹھوکر کھائی. بس اندھیروں کو بھی خدا دکھا رہا ہے, یہ دیکھو یہ اندھیرے ہیں, ان سے بچ کر گزرنا ہے. لعب اور لہو, کھیل اور تماشا, بظاہر دیکھنے میں معصوم سی باتیں دکھائی دیتی ہیں, بچے بھی کھیلتے ہیں, بڑے بھی کھیلتے ہیں اور تماشے بھی دیکھتے ہیں. بسا اوقات ایسے تماشے انبیاء بھی دیکھ لیتے ہیں, اور تماشا اپنی ذات میں کوئی بری بات نہیں ہے, کھیل اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں, انبیاء بھی کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ یہ پہلی منزل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے دائرے کے اندر رہنے والی منزل ہے. اندھیرا تب بنتا ہے جب اس رضا کی منزل سے انسان اگلی منزل میں قدم رکھتا ہے, اور لعب بھی اور لہو بھی, یہ دونوں انسان کو بعض دفعہ انتہائی گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں, ایسے گناہ جسے خدا تعالیٰ شرک قرار دیتا ہے, جو ظلم کی انتہائی صورت ہے. یعنی اندھیروں کی آخری شکل شرک ہے, اور قرآن کریم سے ثابت ہے کہ یہ دونوں باتیں انسان کو اس آخری شکل تک بھی پہنچا دیتی ہیں, اور انسان سمجھتا ہے کہ میں تو معمولی کھیل کود اور تماشوں میں مصروف ہوں, اس میں کون سا گناہ ہے. مگر جب خدا کی رضا سے باہر قدم رکھتے ہیں یہ دونوں باتیں, تو پھر ایسے ظلمات میں تبدیل ہو جاتی ہیں جن کا کوئی کنارہ نہیں ہے, بالآخر انسان کی کامل ہلاکت تک اسے پہنچا دیتی ہیں. اس تعلق میں جو آیات میں نے سامنے رکھی ہیں ان کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ لعب اور لہو روزمرہ کی عام زندگی میں بھی گناہ کی شکل اختیار کرنے لگتی ہیں اور اکثر ہمیں دکھائی نہیں دیتا, اور لازم ہے کہ آپ اپنے ماحول پر یہ نظر رکھیں کہ لعب کو اپنی حدود کے اندر رکھیں, لہو کو اپنی حدود کے اندر رکھیں, اور اپنی اولاد کو ان حدود سے تجاوز نہ کرنے دیں. اس سے پہلے جو عبادات کے سلسلے میں میں نے خطبے دیے تھے ان میں یہ بات کھولی تھی کہ مثلا ایک انسان معصومانہ کھیل میں مصروف ہے, بچے ہیں وہ مصروف ہیں, بڑے ہیں وہ کوئی کھیل دیکھ رہے ہیں, مثلا کرکٹ کا کھیل جو گزرا ہے, اور اسی قسم کے ٹینس کا زمانہ آتا ہے تو ٹینس میں مصروف ہو جاتے ہیں, باکسنگ ہو رہی ہیں تو باکسنگ کے تماشے دیکھے جاتے ہیں. وہ لوگ جو کھیل نہیں سکتے وہ کھیلتا دیکھ تو لیتے ہیں اور یہ ان کی کھیل ہے, مگر ادھر عین اس وقت جب کہ کوئی میچ اپنے انتہا کو پہنچا ہوا ہے, اس وقت اذان کی آواز آتی ہے, نماز کے لیے بلایا جاتا ہے. کتنے ہیں جو اس معصوم کھیل کے میں مصروف رہنے کی وجہ سے نماز کا حق ادا کرنے کو فوقیت دیتے ہیں, کتنے ہیں جو بلا تردد اس ٹریننگ کو بند کر دیں گے یا اس ریڈیو کو ختم کر دیں گے, یا چھوٹے بچوں کو یا بیویوں کو جنہوں نے مسجد میں نہیں جانا ان کو بیٹھا چھوڑ کر مسجد کا رخ کریں گے. وہ جو ایسا کرتے ہیں ان کے کنارے محفوظ ہیں, उनकी सरहदों पर तहरे बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सरहदें अल्लाह के फजल से महफूज हैं और हमेशा महफूज रहेगी। लेकिन वो लोग जो इन मसरूफियतों के वक्त इन फराइज का ख्याल नहीं करते और खुदा ताला की इबादत और दीगर फराइज को इन मसरूफियत इन मशागिल पर कुर्बान कर देते हैं, खा वो खेल हो या लहव हो यानी तमाशा, तो ऐसे लोगों के लिए खतरा दरपेश है और उनके कदम फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं और मजीद और भी ज्यादा सफर अंधेरों में जाकर पूरी कुल्लियतन हदायत के रास्ते से आरी हो जाता है। इस मज़मून में जो कुरान करीम की आयात में आपके सामने रखता हूं बहुत सी हैं, उनमें से एक मसलन फरमा रही है या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीन तख़ज़ू दीनकुम हुज़ूबन व लैबा मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़ार औलिया वत्तकु अल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन व इज़ा नादैतुम इलस्सलात इत्तख़ज़ूहा हुज़ूबन व लैबा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला याक़िलून। वही मज़मून जो मैंने आपके सामने बयान किया है उसको ज्यादा तफसील के साथ यहां बयान फरमाया गया। फरमाया है याद रखो कि ऐसे लोग भी हैं जो जब खेल कूद में मसरूफ हों या लहव में मुब्तला हो जाएं तो फिर अपने मासूम दायरों में नहीं रहते बल्कि आगे कदम बढ़ाकर दीन से भी ऐसा ही सलूक करने लगते हैं और दीन को भी खेलकूद बना लेते हैं। जिस तरह खेलकूद पर तबसरे हों तो किसी इंसान को गुनाह का एहसास नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है वो तो किसी एक खिलाड़ी के खिलाफ बात कर दे या दूसरे के खिलाफ बात कर दे, पर जब खेलकूद के दायरे फलांग कर ये लोग मजहब के दायरे में दाखिल होकर खुदा के बदगजीदा लोगों पर जुबानें खोलते हैं, उन पर तबसरे शुरू कर देते हैं, अपनी मजालिस में उन तबसरों का निशाना दीन के दीन वालों को बनाते और उनके दीन को बना देते हैं। तो पहली हदायत यह दी है कि ये जालिम लोग हैं, इनसे बच के रहो, इनकी सोसाइटी से कतअ ताल्लुकी करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर आखिर तुम उन्हीं जैसे हो जाओगे। बस जहां ऐसे लोग मुखातब हैं जो बिल अमूम अपने रोजमर्रा के मशागिल में खेल कूद और लाभ को अपनी हदूद में रखते हैं, उनको मुतनब्बे फरमाया गया है कि ये मुकाम महफूज नहीं है अगर तुम उन लोगों में उठते बैठते हो जो यहां रियायत नहीं करते, यानी ये ख्याल नहीं करते कि किन लोगों की बातें हो रही हैं, किस मज़मून की बात हो रही है, और अदब की रियायत से निकलकर फिर वो गुस्ताखी की हदूद में दाखिल हो जाते हैं। ला तत्तखिज़ुल्लज़ीन तख़ज़ू दीनकुम हुज़ूबन व लहवा मिनल्लज़ीन ऊतुल किताबा, ऐसे लोग उन लोगों में से हैं जिनको किताब दी गई है मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, वल कुफ़ारा और दूसरे भी हैं, उनको औलिया ना बनाओ, उनको अपना दोस्त ना ठहराओ। वत्तकुल्लाहा इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो फिर अल्लाह का तकवा अख्तियार करो और बच के रहो। इनकी निशानी क्या है, कौन वो लोग हैं जो मजाक का निशाना बनाते हैं? जब ऐसे लोग जो इबादत को फौकियत देते हैं और तरजीह देते हैं, दुनिया के मशागिल छोड़कर इबादत के लिए उठते हैं, तो उस वक्त इनसे बर्दाश्त नहीं होता, उनकी बातों से खुद उनके सीने का गंध फौरन उछल पड़ता है। वैज़ा नादैतुम इलस्सलाते इत्तखज़ूहा हुज़ूबन लैबा, जब तुम खुद भी नमाज के लिए उठते हो और लोगों के भी बुलाते हो, कहते हो उठो जी अब नमाज का वक्त आगे चलो चले, तो कुछ ऐसे हैं जो उसी वजह से बैठे रहेंगे और उस वक्त मजाक के रंग में बात करेंगे कि ये बड़ा इबादत गुजार आ गया है, इसको ज्यादा खुदा को राजी करने का शौक है। ये छुपे हुए काफिर हैं अगर जाहिर ना भी हों, और इसके बाद तुम्हारे लिए जायज नहीं कि उनको औलिया बनाओ और उनको हमनशीन बनाओ, उनकी मजलिसों में बैठना तर्क कर दो और उनसे ताल्लुकात काट लो। वरना दूसरी जगह कुरान करीम फरमाता है कि बिलआखिर तुम उन्हीं जैसे हो जाओगे और फिर रफ्ता रफ्ता तुम में और उनमें कोई फर्क बाकी नहीं रहेगा। दूसरी आयत जो इस मजमून पर एक और पहलू से रोशनी डालती है, फरमाती है वज़रिल्लज़ीन तख़ज़ू दीनहुम लय्बन वलहवन वग़ल्लतहुम अल-हयातु दुनिया। यहां इस आयत में और इस आयत में फर्क यह है कि यहां यह फरमाया गया था कि तुम्हारे दीन को वो मजाक बनाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है बीमारियां ही आगे बढ़ने वाली हैं, एक जगह रोका नहीं करते। जो लोग तुम्हारे दीन को तमाशा बनाते हैं और उस पर तमस्कर से काम लेते हैं, ऐसे लोगों का अंजाम यह होता है कि फिर अपने दीन को भी खेल तमाशा ही बना लेते हैं और खुद अपने दीन की भी कोई इज्जत उनके दिलों में बाकी नहीं रहती, कोई एहतराम बाकी नहीं रहता। फरमाया वज़रिल्लज़ीन तख़ज़ू दीनहुम, महज इस वजह से तुमने उनसे बेताल्लुकी नहीं करनी कि तुम्हारे दीन को निशाना बना रहे हैं खेल नाजायज तनकीद का और तमाशे के तौर पर उसको ट्रीट करते हैं, उससे मामला करते हैं। फरमाया दीन का मामला तो खुदा से ताल्लुक रखता है, इसलिए कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं अगर ये लोग अपने दीन को भी इसी तरह लें और लाभ और लाभ से काम लें और दीन को खेल कूद ही समझें। जरूर लजीना, ऐसे लोगों को छोड़ दो। देखिए कैसी कामिल तालीम है कुरान करीम की, हर मामले को वजाहत से पेश कर रही है और अंधेरों को मजमून भी इतनी रोशनी से दिखाती है कि हर अंधेरा अपने अपने मकाम पर ठहरा हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी हदबंदी करती है, मुख्तलिफ किस्म के अंधेरों की तफसील बयान फरमाती है, कुछ भी इंसान पर अंधेरा नहीं रहने देती। वग़र्रतहुम अल-हयातु दुनिया, और उनको अपने दीन से मजाक करना और दीन को तख़फ़ीफ़ से देखना, अपने दीन का तख़फ़ीफ़ से जिक्र करना इस मरतबे तक पहुंचा देता है। ग़र्रतहुम अल-हयातु दुनिया, कि दुनिया की जिंदगी उनको धोखे में मुबतला करती है। बस वही गुरूर जिसका जिक्र पहले गुजरा है कि इंसान पैरवी तो करता है पानी देखकर, लेकिन धोखे के सिवा वो कुछ भी नहीं होता, पानी की बजाय वहां सलाब मिलता है। फरमाया ये यही लोग हैं जो इस मर्तबे को फिर पहुंचते हैं, उनको अपने दीन से मजाक भी रास नहीं आता और रफ्ता रफ्ता उनको दुनिया की जिंदगी धोखे में मुबतला कर देती है। यानी दीन से जिस जहां हकीकत में इंसानी रूह की सैराबी और शादाबी का सामान है उससे नजरें फिर जाती हैं, वहां उनको शराब दिखाई देता है और जहां शराब है हयाती दुनिया में वहां वो पानी देखते हैं और इसी का नाम गुरूर है, गुरूर है, इसी को धोखा कहते हैं। फरमाया अंतुबसला नफ्सुम बिमा कसबत, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जान जो कुछ भी उसने कमाया है उसके जरिए हलाकत में मुबतला हो जाए, तबाह तो बर्बाद हो जाए, उसका कुछ भी बाकी न रहे। अंतुबसला नफ्सुम बिमा कसबत, ये बहुत ही अहम बात है। ऐसे लोग फिर दुनिया में जो भी कमाते हैं, नेकियां भी दिखाई दें इनकी, वो फायदा नहीं पहुंचाती, क्योंकि गरज दुनिया है और दुनिया का पल्ला दीन पर भारी आ जाता है, भारी हो जाता है, रफ्ता रफ्ता दीन सिरकने लगता है और दुनिया गालिब आती जाती है। फिर इनका जो कुछ भी कमाया है वो उनके कुछ काम नहीं आता सिवाय इसके कि उनको हलाक कर दे। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि वलीयुन वला शफी, हर ऐसी जान को ये तंबीह है कि अल्लाह के सिवा उसका दर हकीकत कोई भी वली या शफी नहीं, कोई नहीं है जो उसके साथ दोस्ती करे और उसकी दोस्ती उसको फायदा पहुंचाए, कोई नहीं जिसकी शफात उसके हक में काम आ जाए, मगर अल्लाह ही शफी है। यहां अल्लाह के शफी होने का क्या माना है? شفیع تو دوسرے کو شفاعت, دوسرے کی شفاعت کرتا ہے, دوسرے کے پاس شفاعت کرتا ہے. اب ہم کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں, وہ گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں. مگر قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اپنی ذات میں شفاعت کا حق نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ اللہ اسے شفاعت کا حق عطا کرے. بس یہاں شفیع سے مراد یہ ہے کہ شفاعت بھی خدا کی مرضی کے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی, وہی اصل شفیع ہے, یعنی شفاعت کو سننے والا اور شفاعت کو قبول کرنے والا. بس ایسا شخص جو دنیا کی زندگی کے پیچھے لگ جائے, وہ اس کا سفر آغاز میں بظاہر معمولی دلچسپیوں کا سفر ہوتا ہے, ایسی دلچسپیوں کا سفر جو انسانی فطرت سے تعلق رکھتی ہیں اور مذہب ان میں دخل نہیں دیتا اور مذہب انہیں جائز قرار دیتا ہے. لیکن جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو یہ سفر پھر اندھیروں کے بعد دوسرے اندھیروں میں مبتلا ہونے لگتا ہے. اب دیکھ لیں, پہلی قسم کا اندھیرا یہ ہے کہ دوسرے کے دین کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں, اور اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے. جب دوسرے کے دین کی بات بھی کرتے ہیں تو یہ احترام ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ابتدان وہ بھی خدا کا کلام تھا, اور پوری وضاحت کے ساتھ جو خدا کا کلام ہے اس کو الگ کر کے اگر تنقید کا نشانہ بنانا ہے تو دوسرے حصے کو جو انسانوں نے داخل کر دیا اس پر بے شک تنقید کرو, مگر کلام اللہ پر تنقید کے قریب تک نہ بھٹکو, اور کوشش کرو کہ دوسرے ادیان کی جو غلط تشریحات ان ادیان کے پیروکار خود کرتے ہیں, وہ بیچارے خود اندھیروں میں مبتلا ہیں, ان پر ان کے اپنے مذہب کو روشن کرو اور بتاؤ کہ اس تمہارے مذہب میں کیا کیا خوبی ہیں, تم غلط سمجھ رہے ہو, یہ توحید کا علم بردار ہے. چنانچہ اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ویدوں کی بھی تعریف فرمائی جن میں سے اکثریت انسان کی خرد برد کے نتیجے میں بالکل محفوظ نہیں رہی, مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام صلح میں ویدوں کے متعلق بہت ہی عمدہ خیالات کا اظہار فرمایا, ان معنوں میں کہ آغاز میں خدا ہی کی طرف سے یہ نازل ہوئی تھی, بندوں نے ان میں دخل اندازی کر کے ان کا ہلیہ گلیہ بگاڑ دیا, مگر آج بھی اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا نور ان میں دکھائی دیتا ہے, اور خدا کا نور کلیتاً بجھ نہیں سکتا, کلیتاً مٹایا نہیں جا سکتا. انسان کے اندھیرے وقتی طور پر اس پر پردے ڈالتے ہیں, مگر ایک انسان فراست کی نظر سے اگر اس نور کی تلاش کرے تو کوئی بھی الہی کتب ایسی نہیں ہے جن میں خدا کے نور کی اصل شان جگہ جگہ جھلکتی ہوئی دکھائی نہ دے. بس اس پہلو سے فرمایا کہ اگر تم محض تمسخر کی خاطر بدتمیزی کے لیے دوسروں کے مذاہب پر زبانیں کھولو گے, جیسا کہ بعض لوگ تمہارے مذہب پر زبانیں دراز کرتے ہیں, تو انجام کیا ہوگا؟ جو ان کا انجام ہے وہی تمہارا بھی ہوگا. تم پھر خود اپنے دین کے معاملے میں بھی گستاخ ہو جاؤ گے, بدتمیز اور بے ادب بن جاؤ گے, اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے, ایسی گہری نفسیاتی حقیقت ہے کہ اگر اس پر آپ غور کریں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. کوئی بھی زبانیں کھولنے والے ٹولے جو آپ کے ذہن میں آئیں, یا فرد کوئی آپ کے ذہن میں ہو, اس کی تاریخ کا جائزہ لیں, کس طرح اس کی زبان آغاز میں پہلے دوسروں پر کھلتی تھی, پھر رفتہ رفتہ قریب آنے لگی, خود اپنے دین کے متعلق وہ بدتمیز ہوا, اور پھر وہ مجلس منگنی جن کا ذکر ہے, وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں, لاب و لاب میں مشغول ہوتے ہیں, پھر اپنے دین پر بدتمیزی کی باتیں شروع کر دیں, یہاں تک کہ خود اپنے مفاد کے خلاف پھر ان کی زبانیں چلنے لگتی ہیں. چنانچہ ذکر بہی ان تبصل نفس بما کسبت, یہ بہت ہی عام مضمون ہے, ذکر بہی, اس کو خوب کھول کھول کر بیان کر, اس کو بار بار نصیحت کے طور پر بیان کر. مبادہ کوئی جان جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کے ذریعے اور اس کے باوجود ہلاک نہ ہو جائے. وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر تو کیسے ہی عدل کا معاملہ کیوں نہ کرے، یا دوسرے معنی یہ ہیں کہ ایسی جان اگر کوئی ہاں کیسا ہی بدلہ پیش نہ کرے، لا يؤخذ منها، یہی اصل معنی یہ ہے. وہ پہلے جو تعدل کے لفظ سے ذرا سا میں ایک دوسرے مضمون میں جانے لگا تھا، جب آیت کے آخر پر نظر پڑی تو پہلی آیت کے تسلسل میں یہی معنی ہے جو اب میں بیان کر رہا ہوں. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، کہ ایسی جان جو تمسخر اور مذاق کر کے دین کے معاملوں کو کھیل تماشا بنا کر ہر اس نتیجے سے محروم رہ جاتی ہے جو اس کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور سوائے ہلاکت کے اس کی دنیا کی محنت اسے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچاتی، اس کے متعلق فرمایا کہ پھر وہ وقت آ جائے گا کہ اگر وہ ہر قسم کا بدلہ جو بھی دے سکتی ہے اپنی جان کو عذاب سے بچانے کے لیے وہ بھی دے دے گی تو بھی لا یوخذ منہا، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اس میں دو روکے ہیں، اول تو بدلہ دینے کی توفیق ہی کوئی نہیں، کیونکہ قیامت کے دن تو انسان بے مالک ہو کر جائے گا، کوئی بھی اس کی ملکیت نہیں ہوگی، وہ بدلہ کس چیز سے دے گا. تو یہ ایک نظریاتی دلیل ہوا کرتی ہے جس کا معنی صرف یہ ہے امکانی دلیل ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ واقعتاً کچھ لوگ یا کچھ جانے قیامت کے دن سونوں کے پہاڑ لے کر خدا کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، یہ قبول کر لے اور ہماری جان چھوٹ جائے. فرمایا اگر ایسا ہو کہ دنیا جہان کی دولتیں بھی پیش کر دیں تب بھی ایسے لوگوں کا کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ جان کسی بدلے کو دے کر اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتی. دوسرا اس میں یہ اشارہ ہے مومنوں کے لیے کہ اس دنیا میں تمہیں پتہ ہے کہ تم سے بدلے قبول کیے جاتے ہیں، صدقے قبول کیے جاتے ہیں، نیکی کے کاموں پہ جو خرچ کرتے ہو وہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا موجب بن جاتے ہیں. تو اب جب کہ وقت ہے تم تو کرو، کیونکہ تمہارا آج کا خرچ، تمہاری آج کی مالی قربانی قیامت کے دن وہ بدلہ بنے گی جو دوسروں کے کام نہیں آ سکتا مگر تمہارے کام آئے گا. اولئک الذین ابصلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ ہلاکت میں ڈال دیے جائیں گے، بما کسبوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے. اب پیاس بجھانے کے لیے جو شراب کا نقشہ ہے وہ اور یہ اس پہلو سے ملتے جلتے ہیں کہ کھولتا پانی بھی کسی کی پیاس نہیں بجھا سکتا بلکہ اس کی پیاس کو اور بھڑکا دیتا ہے، اس کے لیے اور بھی درد کا موجب بن جاتا ہے. جیسا سمندر کا پانی کسی کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا بلکہ اور بھی کھولا دیتا ہے اس کو. فرمایا شراب من حمیم عذاب علیم، پیاس بجھانے کی بجائے ان کے لیے یہ چیز دردناک عذاب کا موجب بنے گی، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ جو دنیا میں کام کیا کرتے تھے بسبب اس کے جو وہ انکار کیا کرتے تھے. اب ایک جگہ جب ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھو کیونکہ یہ ظلماتی لوگ ہیں، یہ تمہیں بھی روشنی سے ظلمت کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے، تو پیچھے پھر باقی کیا رہ جاتا ہے، کن لوگوں میں گزارا کرنا ہے اور کن لوگوں میں اپنا دل بہرحال لگانا ہے، اس کے سوا چارہ کوئی نہیں. اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنہم तो इतना ही वला तादु ऐना का अनहुम वस्बिर नफ्सा का मालजीन यदून रब्बा हूं, उन लोगों के साथ अपना दिल लगा ले और उसी पर सब्र कर, यानी अपनी तमाम कायनात को उन लोगों की हद तक समेट ले, यानी दिलचस्पियों की सारी कायनात को, जो लोग खुदा को पुकारते हैं शाम को भी और रात के वक्त भी, सुबह की यगदात है सुबह के वक्त भी और अशिया रात के वक्त भी, युरीदून वजहहू और उसी की रजा चाहते हैं, उसी का चेहरा मांगते हैं। तवज्जो से मुराद है चेहरा यानी तवज्जो, और तवज्जो और रजा दोनों बातों के लिए वजह का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो फरमाया जब एक कुछ लोगों को छोड़ोगे तो फिर किन लोगों में तुम्हारी दिलचस्पियां महदूद होनी चाहिए, किन में तुम्हारा उठना बैठना होना चाहिए, उन लोगों में जिनकी अपनी तवज्जो का मरकज खुदा की जात है और उनकी सारी रजा उनकी सारी दिलचस्पियां अल्लाह के वजह में हैं। यानी ये मुराद नहीं है कि ये लोग बोर हैं या इनके साथ जिंदगी जो है उसमें वो उकताहट वाली और बेलज्जत हो जाती है। फरमाया वो लोग जो दुनिया की लज्जात की अंधाधुंध पैरवी नहीं करते, उन हदूद तक रहते हैं जिन हदूद तक खुदा ताला इजाजत देता है, उनको भी लज्जतें मिलती हैं। बल्कि जैसा कि मैंने पिछले खुतबे में खोल कर बयान किया था, शराब की पैरवी करने वालों से बहुत ज्यादा लज्जतें पाते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इनसे सिवा भी लज्जतें मिलती हैं और वो लज्जतें वजहुल्ला में हैं, अल्लाह के चेहरे में हैं, अल्लाह की तवज्जो में हैं, अल्लाह की रजा में हैं। बस एक तरफ से जो तुम आंखें बंद करोगे तो उसके मुकाबले पर कुछ और चीज तुम्हें मुयसर आनी चाहिए, वरना नामुमकिन है कि खला की खातिर इंसान एक मुस्बित चीज को छोड़ दे। और यहां अंधेरों से रोशनी के सफर का तरीका समझा दिया गया, यह नहीं फरमाया कि इनको छोड़कर अलग होकर अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ रहो, फरमाया एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी की तरफ मुंतकिल हो, तुम्हें सहारा चाहिए और वो सोसाइटी ऐसी है जिस सोसाइटी का नक्शा खींचते वक्त फरमाता है उनकी अल्लाह की रजा पर आंख रहती है, और जो रजाए बारी ताला है उसमें बे इंतहा लज्जतें हैं। और अंधेरे से रोशनी के सफर का दूसरा नाम यही है कि इंसान खुदा की रजा से महरूम लोगों की से जुदाई इख्तियार करके उस जगह से हिजरत करते हुए उन लोगों की तरफ हिजरत करे जिन लोगों को हमेशा सुबह भी और शाम को भी अल्लाह की रजा मतलूब है। वला तादो ऐना खान हूं, और तेरी आंखें उनसे हटकर दूसरी तरफ ना देखें। यानी सब्र का माना यह है कि वो लोग तुझे काफी हों, और यह ना हो कि अच्छों की सोबत में कुछ देर दिन लगे भी लेकिन नजर यह रहे कि कब यह सोबत खत्म हो तो हम उस सोबत में वापस लौट जाए, या दिल ललचा रहे हमेशा कि वो भी तो चीजें हैं उनकी तरफ भी तो जाना चाहिए, कुछ उनमें से भी देख लिया जाए। फरमाया ये बस हो तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी कायनात बन जाए, तुम्हारा सब कुछ यही हो जाए, और तुम्हारी सारी लज्जतें अपनी तस्कीन इन लोगों की सोबत में पा लें। तुमने फरमाया तुम्हारी तेरी दोनों आंखें इनसे हटकर परे देखने की कोशिश ही ना करें, ख्याल तक ना इनको आए कि इससे पहले भी कोई दुनिया बसती है। और अमरे वाकया यह है कि अगर किसी को रोशनी का सलीका हो तो, और वाकयातन रोशनी को रोशनी समझ रहा हो, तो इर्द गिर्द के अंधेरों में उसकी वो आंख देख ही नहीं सकती जो रोशनी से आशना है, नजर ही कुछ नहीं आता तो वो हटेगी कैसे। तो फरमाया अपनी नजर को इतना ट्यून कर लो रोशनी के साथ कि रोशनी ही दिखाई दे और इर्द गिर्द देखने का मौका ही पैदा ना हो, तो सारी कायनात वही हो जो जो अल्लाह के नूर की पैदा करदा कायनात है उसके से देखो और वहीं तक तुम्हारी सरहदें हों। उससे इर्द गिर्द क्योंकि अंधेरा है इसलिए आंखें वहां से हटकर किसी और चीज की तलाश कर ही नहीं सकती। अगर तू ऐसा करेगा तो फरमाया तुरीदो जीनत अल हयात दुनिया, तो तू असल में अभी तक दुनिया की जीनत की तलाश में ही है और इस मुसीबत ने तेरा पीछा नहीं अभी तक छोड़ा। अगर तू ऐसा करे तो फिर तेरा हाल यह है कि अभी भी तुझे दुनिया की जीनत ही की तलाश है, जिस जीनत को अल्लाह ताला झूठ और गुरूर कह चुका है, जिसको बेहकीकत और बेमानी और बेमकसद बता चुका है। वला तुते मन अकफलना कलबहु अन जिक्रेना व तबा हवा हो व कान अमरहू फुरोता। और हरगिज उसकी पैरवी न कर मन अकफलना कलबहू अन जिक्रेना, जिसे जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है। वह तबा हवा हो, वो भी खला में नहीं रह सकता। जब हमारी याद से गाफिल होता है तो क्या करता है? वह तबा हवा हो, अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करता है, अपने दिली आरजू के पीछे लग जाता है। वह तबा हवा व कान अमरहू फुरोता, और उसका मामला हद से बड़ा हुआ मामला होता है, यानी ऐसा मामला है कि जो हदें फलांग चुका है और अब उसका एक इंतहा से दूसरी इंतहा की तरफ दायमी सफर है। यानी यह मुराद नहीं कि एक मुकाम पर खड़ा हो गया और वो आखिरी तजावुज का मकाम है। तजावुज से मुराद एक सफर है जहां हर अगली हालत पहले से ज्यादा बेतदाली की हालत होती है, हर अगला अंधेरा पहले से ज्यादा सख्त और जालिम अंधेरा होता है। मन अफल न कलबहु अन जिक्रना, यहां जमीर खुदा तआला ने अपनी तरफ बाहर के फेरी है कि हम उसके दिल को अपने जिक्र से गाफिल कर देते हैं। दरअसल ये एक जजा है जिसका जिक्र किया जा रहा है, और एक ऐसे अंदाज में जिक्र किया जा रहा है जिससे खुदा की शान तमजीद जाहिर होती है, उसका मर्द, उसकी इज्जत, उसका वकार, उसकी बुलंदी। हम जब किसी को चाहते हैं और वो हमें नहीं चाहता तो उसके बावजूद हम उसके पीछे लगे रहते हैं, और बसा अवकात इंसान अपनी जिंदगी इसी तरह के शराब की पैरवी में भी जाया कर देता है। जो लज़त उसको नसीब होनी ही नहीं, जो उसके हिस्से की चीज नहीं है, अक्सर उसकी पैरवी में लगा रहता है। यह भी एक अंधेरा है। मगर जब नहीं भी पाता या रद्द भी किया जाता है तब भी बसाकात वो तलब मरती ही नहीं है। ये उसके अदना मकाम का निशान है, ये उसके एहतियाज की इलामत है। बस जो शाह अपने महबूब अपने मतलूब को ना पाएं और फिर भी उसके पीछे लगे रहें, और अक्सर दुनिया के उस शाख का यही हाल होता है, ये इस बात को जाहिर करता है कि उनका मकाम दरअसल अदना है। वो अपनी जात में गनी नहीं है, मुस्तगनी नहीं है, और वो जो जिसकी तलब है अगर वो उनको जवाब में प्यार अता ना करे तो उनकी जिंदगी महरूमियों को शिकार रहेगी। ऐसी सूरत में वो अपने दिल पर उनकी याद के खिलाफ कोई पर्दा नहीं डालता, बल्कि पर्दा पड़ने भी लगे तो उठाने की कोशिश करता है। वो समझता है मैं सारी उम्र इसी की पूजा करूं, इसी के पीछे लगा रहूं, किसी और का ख्याल तक मेरे दिल में ना आए। ठोकरें लगती हैं तो ठोकरें लगती रहें, मगर आखिर दम तक मैं इसी महबूब का पुजारी बना रहा हूं। ये इंसानी फितरत है जो उसे अपने लाहासिल इश्क पर सबात कदम अता करती है। ऐसा इश्क जो लाहासिल है उसका फायदा कोई नहीं, फिर भी उसे सबात कदम है। ये सबात कदम खूबी का सबात कदम नहीं है, ये इस्तकलाल ऐसा नहीं जिसकी तारीफ की जाए, ये उसकी कमजोरी का मजहर है। वो बेचारा उसके बगैर रह नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमाता है मैं ऐसा बेचारा नहीं हूं कि तुम मुझे ना चाहो और मैं तुम्हारे बगैर ना रह सकूं, बल्कि मैं तो बेनियाज हूं। हकीकत में मैं जो तुम्हारे दिल में आता हूं तो तुम्हारी जरूरत के ख्याल से, अगर तुम ना चाहोगे तो मुझे कौड़ी की भी परवाह नहीं है कि तुम्हारे दिल में विराजमान हूं। अफल ना कल्ब हम जिक्र ना, ऐसा शख्स जो हमारी याद को प्यार और मोहब्बत से नहीं देखता, हमारी हम जिस तरह उर्दू में तो हम कहते हमारी बला से, खुदा फरमाता है मुझे इसकी कुछ भी परवाह नहीं करी कि मैं उसे याद रहूं या ना रहूं, बल्कि हम खुद इज्जत अपनी इज्जत और अपनी शान के तकाजे पूरे करते हुए उसके दिल पर अपनी तरफ से पर्दे डाल देते हैं, उसके मददगार बन जाते हैं उन चीजों में जो वो खुद अपने लिए पसंद कर बैठा है। तो वो मौके ही हाथ से जाते रहते हैं जिन मौकों में खुदा की याद उसको आ सकती है। और जितना इंसान खुदा के मुखालिफ सिमत सफर इख्तियार करता है जो अंधेरों का सफर है, उतना ही खुदा की सिमत में और पर्दे उतरते जाते हैं और हर पर्दा उसके अंधेरों को ज्यादा गहरा कर देता है। तो फरमाया कि ला तो ते मन अकफल न कल्ब हो, उसके पीछे ना लग जाना, उसकी पैरवी ना करना, यानी उसकी तमन्नाएं उसकी आरजुएं उसकी ख्वाहिशात, जब वो तुम्हें बैठेगा तो बताएगा कि मैंने ये चीजें हासिल की, इस तरह मैंने दुनिया कमाई, इस तरह मैंने दोस्त कमाए, इस तरह ऐशो इशरत में जिंदगी बसर करता हूं, ये चीजें चाहता हूं, ये जब सुनोगे तो तुम्हारे दिल में अदना भी हिर्स पैदा नहीं होनी चाहिए। उसका तुमसे क्या ताल्लुक जिसका खुदा से ताल्लुक नहीं, उसकी पैरवी नहीं करनी से मुराद है उसकी तमन्नाओं की पैरवी नहीं करनी, उसके तर्ज जिंदगी की पैरवी नहीं करनी। इस तरह बेनियाज होकर उसको देखो जैसे खुदा बेनियाज होकर उसको देखता है। वक्तबा हवा हो, वो फिर अपने हवा की पैरवी करता है, तुम तो हवा हवस की पैरवी करने वाले नहीं हो। वकाना अमरुहु फुरता, और उसका मामला हद से तजावुज करने लगता है। जब तजावुज करता है तो फिर एक और मुकाम, एक तीसरी मंजिल अंधेरे की उसके सामने ले आता है। फरमाता है इन सात आतियतुन अकादु उख्फीहा ले तुज्जा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसा। क़यामत यकीनन आने वाली है, अकादु उख्फीहा करीब है कि मैं उसे जाहिर कर दूं। ले तुज्जा कुल्लु नफ्सिन, यहां उख्फीहा का जो मजमून है इसका इसके दोनों माने हैं, मख्फी रखना भी और जाहिर करना भी। इस आयत की तफसीर का यहाँ इस वक्त मौका नहीं, बाकी इस पहलुओं पर जुबान इस वक्त तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। इस ताल्लुक में इसका यही माना होगा इन सात आतियतुन अकादु उख्फीहा, बईद नहीं कि मैं उसे जाहिर कर दूं या करीब है मैं कि उसे जाहिर कर दूं। कुल्लु नफ्सिन बिमा तसा, हर नफ्स पर उस मामले में जिसकी वो उसको जजा दी जाएगी जिसके लिए वो कोशिश कर रहा है। जजा का ताल्लुक लितुज्जा से है और बेमातसा का मतलब है जिसकी वो कोशिश कर रहा है। बस इस तर्जमे की तफसील यूं बनेगी कि कयामत तो बहरहाल आने वाली है, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रही। ऐसा शख्स जो दुनिया की पैरवी कर रहा है, दुनिया के धोखों में मुबतला है, उसे आइंदा की जिंदगी की तरफ अपने बढ़ने का एहसास तक नहीं, लेकिन एक ऐसी मंजिल जरूर आएगी जहां पिछली दुनिया दिखाई देनी बंद कर हो जाएगी और अगली दुनिया दिखाई देने लगेगी। वो वक्त होगा यानी मौत का वक्त, जब वो जानता है कि उसका पिछला सफर तो खत्म हुआ, उसका कुछ भी हासिल नहीं हुआ, अगला सफर अब करीब है, उसे सिवाय आखिरत के फिर और कोई ख्याल नहीं आता। वो कौन सा वक्त है? ले तुज्जा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसा, ताकि जजा दी जाए हर उस जान को जिसने कुछ दुनिया में कमाया है या कुछ कोशिश की है। फला यसुद्दन्नक अन्हा मन ला युमिनु बिहा, बस वो लोग जो उस पर ईमान नहीं लाते जब तक वो उस आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचते, अगर तुम उनके करीब रहोगे तो वो तुम्हें भी उससे हटा लेंगे, तुम्हें भी उस राह से रोक देंगे। तो अजीब बयान है, एक तरफ ये कथी खबर है कि हर जान लाजमन उस मकाम तक पहुंचाई जाएगी जहां उस पर बात की जिंदगी रोशन कर दी जाएगी और पर्दे उठाए जा रहे होंगे, लेकिन जिनको उस वक्त दिखाई देगा, फरमाया वो ईमान नहीं लाते पहले, अगर पहले ईमान लाते तो उन्हें पहले भी दिखाई देता। ऐसे लोगों के करीब न रहो, ऐसे बेईमानों के साथ दोस्ती न करो जिनको आखिरत पर यकीन नहीं है। यकीन तो होगा लेकिन उस वक्त होगा जब उनके लिए देर हो चुकी होगी और बेफायदा हो चुका होगा, जब मौत के चंगल में मुब्तला होंगे उस वक्त वो देख लेंगे। और फरमाया जरूर ऐसा वक्त आने वाला है, मगर जब तक वो नहीं देखते वो दूसरों को उस रस्ते से रोकते हैं। फरमाया तुझे ऐसे लोगों का ताल्लुक रोक न दे, मल्ला यूं इन बेहा व तबा हवा हो फतरदा। वो अपनी हवा की पैरवी करने वाले लोग हैं, वो रज़ाए बारी ताला की पैरवी नहीं करते। बस अगर तू ऐसे लोगों से दोस्ती रखकर उनके पीछे लगेगा तो तू भी हलाक हो जाएगा। फतरदा लाजमन तू हला, माफ करना, लाजमन तू हलाक होगा। और हलाकत की आखिरी शक्ल क्या है? फरमाता है अरायता मन इत्तखज़ा इलाहु हवाहु अफअंता तकूनु अलैहि वकीला। क्या तू नहीं जानता कि ऐसे लोगों की जुल्मत फिर बिलाखिर कितनी गहरी हो जाती है? पहले वो अपनी हवा के पीछे चलते हैं, फिर अपनी ख्वाहिश को माबूद बना लेते हैं, पहले उसकी पैरवी करते हैं उसको हासिल करने के लिए, फिर जिसको वो हासिल करने की पैरवी करते हैं वो उन पर सवार हो जाती है, चीज उन पर कब्जा कर लेती है और अपनी ख्वाहिश का गुलाम बन जाते हैं लोग। और जब ख्वाहिश का गुलाम हो तो उसकी इबादत करने लगते हैं। और ये वो मजमून है जो एक गहरी इंसानी फितरत पर रोशनी डाल रहा है, जिससे तमाम दुनिया के मसाइल का ताल्लुक, तमाम दुनिया के मजाहब का ताल्लुक है। अमरे वाकया यह है कि बेखुदा को इंसान रह नहीं सकता, नामुमकिन है कि कोई शख्स खुदा के बगैर रह सके, क्योंकि खुदा की तलब उसकी फितरत में मुर्तसिम फरमा दी गई है। कौले बला से हर रूह ने यह इकरार किया है कि हां हमारा एक रब होना चाहिए, और है, क्यों नहीं है? बस वो लोग जो हकीकी रब से ताल्लुक तोड़ते हैं, ये वहम है कि वो बेखुदा रहते हैं। फरमाया उन पर उनकी ख्वाहिशात इस तरह गालिब आ जाती हैं जैसा मोमिन बंदों पर खुदा का तसव्वुर गालिब आता है, और अंधाधुंध उन ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं और उसके नतीजे में वो जराइम में बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि ख्वाहिश का शैतान उनको किसी बुरे रास्ते से रोकता नहीं बल्कि बुरी रक्षों की तरफ बुलाता और उकसाता है और आगे बढ़ाता चला जाता है। लेकिन इबादत के बगैर वो नहीं रहते, बस दुनिया उनकी इबादत की जगह बन जाती है, दुनिया की पैरवी उनकी इबादत हो जाती है और दुनिया उनका माबूद बन जाती है। अब जितनी भी कौमें खुदा से हटी हैं उनको देख लें, दुनिया उनका माबूद है, सब कुछ दुनिया है, और इतने इन्हमाक से उनकी पैरवी करते हैं कि वक्ती तौर पर खुदा ही के कानून के ताबे उस माबूद बातिल की परस्तिश के नतीजे में कुछ ना कुछ अपनी मकासद को हासिल भी करते रहते हैं। चुनाचे कुरान करीम ने जो फरमाया, वो फरमाया अफहसब अल्लज़ीना कफरू यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना आतना जहन्नम लिलकाफिरीना नुज़ुला कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीना आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना। ये जो आखिरी टुकड़ा है इस आयत का, ये है जिसका इस जो आयत ज़ेर नज़र है उससे गहरा ताल्लुक है। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयाति दुनिया, जब दुनिया उनकी माबूद हो जाए तो उनकी तमाम तर कोशिशें इस माबूद की इबादत में खर्च होती हैं, और कुछ हासिल भी करते हैं, ये नहीं कि कुछ हासिल नहीं होता, दुनिया उनको जरूर हासिल होने लगती है। और उसी धोखे की जिंदगी में, उसी रोशनी में जिस जिसको मैं कुरान की तारीफ में अंधेरा कह रहा हूं, उसमें वो देखते हैं और समझते हैं हमने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, हम तो सनतों पर गालिब आ गए हैं, हमारे जैसा कारीगर तो दुनिया में कभी पैदा नहीं हुआ, और सनतों की वजह से हम दुनिया पर गालिब आएंगे और दुनिया को अपने नीचा दिखा देंगे। ये मजमून है जो इस पैरवी से वाबस्ता है, अन्नहुम युसिमून सुन्ना। ये वो लोग हैं जिनके मुताबिक फरमाया घाटा खाने वाले तो हैं मगर आखिरत में घाटा खाने वाले हैं। दुनिया की जिंदगी तो इनको मिलेगी मगर ये दुनिया का माबूद आखिरत में उनके काम नहीं आएगा, उस माबूद को वो पीछे छोड़कर आगे जाएंगे, ना इनका वली हो सकेगा ना उनका शफी हो सकेगा। तो हवा जो है ये देखने में तो एक दिल की तमन्ना थी, और इंसान कहता है कि क्या हर्ज है कि इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरा कर ले, खुदाई ने तो फितरत में पैदा किया है। और कई लोग ये सवाल उठाते हैं, इतने एक अजीब है अल्लाह ताला, एक तरफ दिल में तलब रख दी है कि ये भी लो वो भी लो ये भी मजा करो, और जिनसी तलब भी है, माल और दौलत की भी तलब है, और फख्र और मुबाहात की भी तलब है, और दूसरी तरफ रस्ते बंद कर दिए हैं। एक दफा एक शख्स ने मुझे लिखा, वो अपनी तरफ से नफ्सियात के माहिर थे, उन्होंने लिखा तो ये तो नफ्सियात के खिलाफ बात है, क्या आपका मतलब है कि हर लोग इंसान मरीज बन जाए, अपने ख्वाहिशात पर काबू कर करके उन पर तारे लगा लगाकर हर शख्स नफ्सियाती मरीज बन जाए। मैंने कहा आपका सवाल जो है यहां नहीं ठहर रहा, आगे भी चलता है। आप जब किसी स्टोर में जाते हैं वहां आपको अच्छी प्यारी प्यारी चीजें मिलती हैं, क्या आपके दिल में आरजू नहीं होती कि उसको उठा लें? उठाते क्यों नहीं? क्यों नफ्सानी मरीज नहीं बन जाते? वो खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, दिल चाहता है कि अपने खामन के साथ ना हो मेरे साथ चले, या कहीं आपने झपट के उसको खींच कर अपने खामन से अलग किया है। किसी खूबसूरत कोठी किसी महल को देखते हैं, आपका तभी दिल बताए चाहता है कि नहीं, क्या फितरत की आवाज उठती है कि नहीं कि हाँ काश ये मेरा होता? तो फिर दनदनाते हुए चले जाए, क्यों अपनी ख्वाहिश को दबाते हैं? नफ्सियाती मरीज क्यों नहीं बन गए? महज जहालत है, नफ्सियात को ना समझने के नतीजे में महाराने नफ्सियात ने बड़े बड़े बेहूदा और पागलों वाले नतीजे निकाले हैं, और इसी के नतीजे में आजकल के तालीमी माहौल पर बहुत ही बद असर पैदा हुआ है। जहां नेकी के मामलात हों, जहां खुदा की हदूद की बातें हों, वहां स्कूल के बच्चों को कहते हैं है तुम्हें क्यों रोकते हैं मां बाप, उनका क्या हक है, तुम्हारी फितरत की आवाज है, जाओ बदमाशियां करो आवारगी करो जो चाहो करो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं। जब दुनिया के कवानीन को तोड़ते हैं तो वहां उनकी पकड़ के हाथ सख्त हो जाते हैं। महज एक मुनाफकत है, एक धोखा है, और मताउ गुरूर में मुनाफकत की जिंदगी भी दाखिल है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हवा को माबूद बनाओगे तो फिर कोई हद बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि माबूद कर तक पहुंचने के लिए रस्ते में कोई कानून हायल नहीं हो सकता। माबूद तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है, दौड़ो और उसकी तरफ चले जाओ, तो उसके आखिरी नतीजे तक तुम पहुंचोगे। दुनिया तुम्हारी माबूद होगी तो रस्ते के तमाम कवानीन, तमाम इंसानी फितरत के तकाजे जो तुम्हें तहजीब सिखाते हैं, जो तुम्हें बाज मुकामात पर रुकने की तालीम देते हैं, जो आवाज देते हैं कि इससे आगे तुम्हें कदम नहीं रखना, हर ऐसे मौके पर तुम्हें अपनी ख्वाहिश की गर्दन पर छुरी फेरनी पड़ती है, तब दुनिया में अमन कायम होता है। अगर तुम्हारा माबूद बन गई ख्वाहिश तो दुनिया की गर्दन पर छुरी फेरनी पड़ेगी, दुनिया के हकूक बर्बाद करने पड़ेंगे, तब तुम अपनी ख्वाहिश की पैरवी कर सकते हो, वरना इस ताकत की ताकत तुम्हें नसीब ही नहीं हो सकती। ये लाभ और लाभ के ताल्लुक में वो आखिरी अंधेरा है जिसका जिक्र कुरान करीम ने दूसरी आयत में खोलकर बयान फरमाया। फरमाया इसको माबूद ना बना बैठना, अगर ये माबूद बन जाएगा तो हर बुरी बात जिसकी हर बात जिसकी तुम्हारी फितरत में तलब है वो जायज रस्तों पर नहीं रहेगी, वो तुम्हारी कुर्बानी के नतीजे में नहीं बल्कि दुनिया की कुर्बानी के नतीजे में वो जिंदगी पाएगी, जिंदगी का पानी हासिल करेगी। इन दूसरों का खून तुम्हारी गिजा बन जाएगा, और ऐसी दुनिया बेअमन हो जाती है। ऐसी दुनिया में हर तरफ एक लाकानूनियत का दौर चलता है, हर सुकून छीना जाता है, हर अमन की पनागाह में जालिम दाखिल हो जाते हैं और हर घर में सनद लग जाती, सनद लग जाती है, यानी उस हर घर में नकब लग जाती है और कोई जगह घर बाकी रहता ही नहीं है। ये आज का दौर जो है इसमें लाभो लाभ ने बैने ही ये नक्शा पैदा कर दिया है। बस कुरान करीम ने जो ये फरमाया कि खुदा के सिवा अगर कोई और माबूद होते तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाती, फसाद बरपा हो जाता। वो एक दूसरे की बादशाही से चीजें ले उड़ने के लिए तो कोशिश करते, ये उसकी तफसील है एक पहलू से। जब गैरुल्लाह की इबादत करोगे तो सबसे खतरनाक इबादत अपने नफ्स की इबादत है। अपने नफ्स की इबादत के नतीजे में जहां खुदा की मलकियत है, जहां तुम्हारे हाथ रोके गए हैं, जहां तुम्हारे कदम थामे गए हैं, ना हाथ रुकेंगे ना कदम चलने से बाज आएंगे, उस तरफ बढ़ेंगे। और वो जो जिस तरफ बढ़ेंगे वो अमलन खुदा की मलकियत है मगर अता उसके बंदों को हुई हुई होती है। बराह रास्त खुदा से नहीं कुछ छीन सकता, कुछ खुदा की तकसीम में रखना डालता है। जिन खुदा के बंदों को आर्जी मलकियत नसीब हुई है उनका अमन टूटता है। और इस दौर में जैसे शीशे में तस्वीर दिखाई देती है और शीशा उस तस्वीर को उछाल कर बाहर फेंकता है, इस तरह सोसाइटी तुम्हारी तस्वीर को उछालकर तुम्हारे मुंह में मारेगी। ये हो नहीं सकता कि तुम लोगों के अमन उठाओ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, लोगों के अमन बर्बाद करो और तुम्हारा अमन बर्बाद ना हो। ऐसी सोसाइटी में फिर हरेक का अमन बर्बाद हो जाता है और झूठे खुदा की इबादत यहां तक पहुंचाएगी, इसके सिवा तुम्हें कुछ नहीं बचा सकती। तो ऐसा तभी मंतकी नतीजा है कि उससे मफर ही कोई नहीं है। जो चाहो कर लो, जितनी चाहो दलीलें तलाश करो। जो नतीजा कुरान ने निकाला है कि अंधेरे की पैरवी में ठोकरे ही ठोकरे हैं और हलाकत ही हलाकत है, जितना आगे बढ़ोगे उतना ही ज्यादा खौफनाक नतीज मुंह फाड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और तुम उन चीजों के गुलाम बन जाओगे जिनको अपना गुलाम बनाने के लिए उनकी पैरवी शुरू की थी। तो अल्लाह ताला इन सब अंधेरों से हमें बचाए। और इसकी मजीद तफसीलात की भी जरूरत है। अगर खुदा ताला ने तौफीक दी तो इस मजमून को रोजमर्रा की इनफरादी जिंदगी में मजीद चिस्पा करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किन अंधेरों से बचना है ताकि खुदा का नूर हासिल करने के लिए जगह तो बने। जिस दिन को अंधेरों ने घेर रखा हो वहां कोई जगह ना हो खुदा के नूर के लिए, वहां खुदा का नूर नहीं आएगा, क्योंकि वो इनसे शिकस्त नहीं खाता अंधेरे से, खुदा की गैरत उसे वापस खींच लेती है। बस ये वहम है कि खुदा का नूर अंधेरों से मार खाता है, अंधेरों से शिकस्त खा जाता है। अल्लाह ताला की इज्जत और उसकी रफ़त और उसकी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि जिस दिल में उसके नूर की तलब न रहे वहां अपने नूर को जबरदस्ती ठोंस दे। वो वापस बुलाता है और पर्दे डालता रहता है कि तुम्हें मैं इस नूर से खूब बचाऊंगा जिस नूर से तुम खुद बचने की कोशिश कर रहे हो, जिससे तुम मुतनफर हो चुके हो। बस अल्लाह ताला हमें इस मजमून को समझने की भी तौफीक अता फरमाए और अमली जिंदगी में जारी करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये महज इल्मी दिलचस्पी की बातें नहीं है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठोस हकायक हैं जिनको समझने के नतीजे में, जिन पर अमल के नतीजे में हमारी जिंदगी भी तब्दील हो सकती है और हमारे माहौल भी सुधर सकते हैं। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह ताला
हमें कभी वो दूसरी खुदा खुदा पढ़ने हैं।
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر